जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्धमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम आनंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 29। सब लोग मेरे पीछे बोले, यद् युज्यते सुवसुकर्म मनोवचो भी देहात्म जादे सुनिभेस तदसन पृथक्त्वान् तैरेव संभवति यन् क्रियते पृथक्त्वान् सर्वस्य तन् भवति मूल निसेचनम् य यद् युञ्जते सुवसुकर्म मनोवचो भीर देहात्म तैरेव संभवति यन् क्रियते पृथक्त्वान् सर्वस्य तन् भवति मूल निसेचनम् य यद् युञ्जते सुवसुकर्म मनोवचो भीर देहात्म जादि सुनिभेस तदसन् पृथक्त्वात् तैरेव संभवति यन् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तन् भवति मूल निसेचनम् य बोलिए। शब्दार्थ बोलिए, यत जो भी युज्यते संपन्न किया जाता है असु जीवन की रक्षा के लिए, वसु संपत्ति की रक्षा, कर्म कर्म मनः मन के कार्यों से, वचो भी शाब्दिक कार्यों से, देह आत्मज आदेशो अपने शरीर या परिवार के लिए, निर्भि मनुष्यों के द्वारा, तत् वह असत् क्षण भंगुर पृथक्त्वात् श्री भगवान से वियोग के कारण, तैः उन्हीं कार्यों के द्वारा एवं निस्संदेह सत भवती वास्तविक तथा स्थायी बनता है। यत जो क्रियते संपन्न किया जाता है, अपृथक्त्वात् वियोग ना होने से, सर्वस्य हर एक के लिए, तत् भवति लाभप्रद बन जाता है। मूल निषेचनम् वृक्ष की जड़ को सींचने की तरह है। यत् जो अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मन वचन तथा कर्म से विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए, व्यक्तिगत या विस्तृत इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से अलग होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब यही कार्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष में वितरित हो जाता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। ये जो श्लोक है ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। ये जो कथा है ये पूरी हो गई, क्षीर सागर का मंथन और मोहिनी रूप में भगवान का अवतार, और उससे जो है देवताओं को अमृत की प्राप्ति हो गई। तो यही उद्देश्य था, समुद्र मंथन का उद्देश्य यही था, अमृत की प्राप्ति हो और देवताओं को अमृत की प्राप्ति हो गई। तो देवताओं के अमृत को अमृत की प्राप्ति हुई और असुरों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस संबंध में जो निष्कर्ष है, इस संबंध में जो निष्कर्ष है वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं कि देवता लोग जो है चूंकि भगवान के आश्रित हैं इसलिए उनके कार्य में सफलता प्राप्त हुई, और असुर लोग चूंकि भगवान के विरोधी हैं तो उनके कार्य में असफलता प्राप्त हुई। परिश्रम ही केवल प्राप्त हुआ, श्रम ए भी केवलम, समुद्र मंथन का कितना परिश्रम था, तो परिश्रम ही उनको मिला, उन्हें कोई फल नहीं मिला, अमृत नहीं प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद युज्यतेषु वसु कर्म मनोवचो भिर, तो पांच चीजों को जो है आप लगाते हैं, है? किसमें? शरीर और अपने परिवार के सेवा में पांच चीजों को आप लगाते हैं। क्या? एक तो अशु, अशु का मतलब प्राण, अपने प्राण की क्रियाएं, और वसु का मतलब अपना धन, तो अपना जीवन अपना धन, और फिर कर्म का मतलब अपना शरीर और मन और वाणी, है? तो पांच प्रकार से आप जो है अपने शरीर और अपने परिवार की सेवा में लगाते हैं तो वो क्या होता है, असत होता है, पृथक्त्वात्, क्योंकि भगवान से अलग होकर के आप भगवान से अलग होकर के भगवान की सेवा से अलग होकर के आप मतलब मनुष्यों के लिए गए, मनुष्य लोग जो है अगर अपने प्राण यानी अपना जीवन और अपना धन और अपना शरीर और अपना मन और वाणी, ये पांचों चीजों को जो है अपने शरीर और अपने परिवार की सेवा में लगाते हैं भगवान से पृथक होकर के, तो वो क्या हो जाता है, असत हो जाता है। असत का मतलब है कि होते ही नहीं, अपने शरीर और अपने परिवार की भी रक्षा नहीं होती, वो भी सब नष्ट हो जाता है ना। लेकिन तैरेव असंभवती, लेकिन वही जो है सब सत हो जाता है अगर अपृथक होकर के किया जाए, भगवान से पृथक ना होकर के, भगवान से जुड़ करके। तो मतलब भगवान के वो भगवान को साथ में रख करके जब आप ये सब कार्य करते हैं तो सत हो जाता है, सर्वस्य तद् भवति, और वो जो है कार्य सबके लाभ के लिए हो जाता है। तो केवल अपना ही इसमें स्वार्थ नहीं होता है, अपना ही अपनी रक्षा ही नहीं होती है, बल्कि सबकी रक्षा होती है, सबका इसमें पोषण हो जाता है। तो एक जो है तरीका तो यह है कि हम जो है अपना अपना जीवन और अपना धन और अपना कर्म और मानी वाणी और मन, पांचों को जो है हम अपनी और अपने परिवार की सेवा में लगाते हैं, है ना। तो भगवान से अलग होकर के हमारे जितने भी ये सब कार्य असत हो जाते हैं, मतलब किसी की भी रक्षा नहीं होती, ना अपने शरीर की ना अपने परिवार की, कोई भी जो है प्रसन्न नहीं होता। और दूसरा तरीका ये है कि वो जो है अगर हम भगवान से जुड़ करके भगवान को केंद्र में रख करके यही कार्य, पांचों कार्य, कौन से कार्य, मतलब अपने जीवन के सब कार्य, अपने धन से भी जो हम सेवा करें और अपने मन से सेवा करें, अपनी वाणी से सेवा करें और अपने शरीर से सेवा करें, पांचों प्रकार की सेवाएं, अपने जीवन से सेवा करें, धन से सेवा करें, मन से, वाणी से, शरीर से, पांचों प्रकार की सेवाएं अगर हम करते हैं, भगवान को अपने साथ जोड़ करके करते हैं, तो वो जो है सत हो जाता है। और सत हो जाता है यानी उसमें अपनी भी रक्षा होती है, अपने परिवार की रक्षा होती है और अपने पूरे संसार की भी प्रसन्नता होती है, सबकी प्रसन्नता होती है। और वो किस तरह से है, जैसे वृक्ष जड़ में आपने पानी डाला तो वो जो पानी है वो केवल एक शाखा में नहीं जाएगा कि आप चाहें कि भाई मुझे मिल जाए, आप भी वृक्ष की एक शाखा है मान लो, तो आप आपको आपको ही मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, पूरी सृष्टि की जो है इसमें प्रसन्नता होगी, आपकी भी प्रसन्नता होगी और सब सृष्टि की प्रसन्नता होगी। फिर आप अगर जो है अपने ही लिए चाहते हैं कि अपना ही प्रसन्नता हो, अपनी प्रसन्नता, अपने परिवार की प्रसन्नता हो, है ना, तो आप जड़ से अलग हो करके आप एक शाखा में अगर मान लो पानी डालते हैं तो शाखा में पानी नहीं जाएगा और ना जड़ में पानी जाएगा, कहीं पानी नहीं जाएगा, और सब असत हो जाएगा यानी बेकार का काम हो जाएगा, है ना। मान लो एक पत्ती है, वो पत्ती चाहती है कि भाई मुझे केवल पानी मिले, पेड़ की पत्ती मुझे केवल पानी मिले, तो उसको पानी मिले, पानी अगर दोगे उसको तो उस पत्ती में भी पानी नहीं जाएगा, वो भी सूखेगी और पूरा पेड़ भी सूखेगा, कोई भी प्रसन्न नहीं होगा, है। लेकिन वही पत्ती जो है अगर चाहती है कि मुझे पानी मिले, मेरा सिंचन हो, तो जड़ में अगर वो पानी डाले तो वो पानी जो है पत्ती में भी जाएगा, लेकिन सब पत्तियों में जाएगा, वृक्ष की सब शाखाओं में जाएगा, सब पूरे वृक्ष में जाएगा। तो आप अकेले जो है अपने अगर प्रसन्नता चाहते हैं तो आप अपनी प्रसन्नता नहीं पा सकते, आपको भगवान को प्रसन्न करना होगा, भगवान को साथ में रख करके सब कार्य करने होंगे, तो फिर जो है भगवान प्रसन्न होंगे, जड़ में सिंचन होगा और तने में और शाखाओं में और पत्तियों में, सब में सिंचन होगा। तो एक ही तरीका है, है ना। यथा स्कंद शाखा नाम तरुण मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनसी ही, है। तो एक श्लोक और भी है जिसमें बताया गया है कि तरुण मूलावसेचनम, वृक्ष जड़ में अगर आप सिंचन करते हैं तो तने को और शाखाओं को सबका सिंचन होता है, एवं आराधना में उसी प्रकार से विष्णु की आराधना से सबकी आराधना होती है और अपनी भी आराधना होती है। एवं आराधना विष्णु सर्वेशम आत्मनसी ही, नहीं अपनी केवल आराधना आप करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। पेड़ की पत्ती एक जो है पत्ती है वो केवल चाहती है कि भाई मैं हरी भरी हो जाऊं, मेरा सिंचन हो, तो हो ही नहीं सकता, वो सब असत होगा, है ना। तो अपने घर परिवार के लिए आप जो है पांचों चीजों को लगाते हैं, अपना पूरा जीवन दे देते हैं अपने घर परिवार की सेवा में, है, और अपना जो है धन भी पूरा लगाते हैं और मन और वाणी और शरीर पांचों प्रकार से है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकवादी कार्यकलापों एवं कृष्ण भावन अमृत के लिए संपन्न कार्यों में यही भेद होता है। सारा जगत क्रियाशील है और इसमें क्या हो गया, ठीक है सब कुशल। सारा जगत क्रियाशील है और इसमें कर्मी ज्ञानी योगी तथा भक्त सभी सम्मिलित हैं। तो प्रभुपाद चार प्रकार के लोग बता रहे हैं, पहले कर्मी, दूसरे ज्ञानी, तीसरे योगी और चौथे भक्त है ना। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, भुक्ति कामी यानी कर्मी, फिर मुक्ति कामी यानी ज्ञानी, फिर सिद्धि कामी यानी योगी, सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण के भक्त निष्काम होते हैं इसलिए शांत होते हैं। तो निष्काम का मतलब उनका जो है अपनी भगवान से अलग होकर के प्रसन्न नहीं होना चाहते हैं, भगवान से अलग होकर के अपना कार्य नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो निष्काम है अतएव शांत, इसलिए वो शांत होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं सारा जगत क्रियाशील, सब लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या पांचों प्रकार से, अपना जीवन, अपना धन और मन और तन और वचन, तन मन वचन जीवन और धन, पांच चीजें, पांचों चीजों से जो है कार्य कर रहे हैं। निभी का मतलब मनुष्य, ये मनुष्यों के लिए सिद्धांत है, पशु पक्षियों के लिए सिद्धांत नहीं है, मनुष्यों के लिए। निभी शब्द आया है पशु मनुष्यों के लिए। तो पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सब क्रियाशील हैं और ये मनुष्य जो है पांच चार प्रकार के हैं, कर्मी है कोई, कोई ज्ञानी है, कोई योगी है और कोई भक्त है। तो चार प्रकार के हैं लोग। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भक्तों के कार्यों के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा, निराशा और समय और शक्ति के अपव्यय में समाप्त होते हैं। निराशा में समाप्त होंगे और समय के अपव्यय, समय नष्ट हुआ पूरा और शक्ति भी नष्ट हुई और निराशा मिली। पूरा समय नष्ट हुआ, पूरी शक्ति नष्ट हुई और मिली क्या, निराशा। तो जितने भी कार्य हैं, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, सबके कार्य जो है परिणाम ये होता है, निराशा प्राप्त होती है और समय पूरा नष्ट हुआ, शक्ति पूरी नष्ट हुई। आगे प्रभुपाद लिखते हैं मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सहा, जो भक्त नहीं है उनकी आशाएं, उनके कर्म और उनकी ज्ञान, उनका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। मोघ का मतलब व्यर्थ। तो तीनों बार भगवान ने मोघ शब्द का प्रयोग किया है ना, गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। मोघ आशा यानी आशा भी उनकी व्यर्थ है, आशा करते हैं कि ये कार्य हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा, उस तरह से मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो आशाएं सब व्यर्थ हैं। मोघ आशा मोघ कर्माणो, और जितना उन्होंने कर्म किया वो भी सब व्यर्थ हो गया। और मोघ ज्ञाना, और जितना उनका ज्ञान है, जो उन्होंने मतलब विचार किए थे वो सब व्यर्थ हो गया है ना। उन्होंने जो योजनाएं बनाई, ज्ञान का मतलब जितनी योजनाएं बनाई कि भाई मैं मुझे जो है संतुष्टि हो जाए, तो सब जो है निराशाजनक हैं। आगे अब भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने परिवार, समाज, जाति या राष्ट्र के लिए कर्म करता है। ये सब क्या है, पृथक भाव से, भगवान से पृथक होकर के क्या, या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति या समाज की इंद्रिय तृप्ति या जाति की इंद्रिय तृप्ति या पूरे राष्ट्र की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसे सारे कार्य श्री भगवान से पृथक होने के कारण असत माने जाते हैं, असत। जैसे गांधी जी हैं तो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो यहाँ राष्ट्र तक जो है कोई व्यक्ति जो है मतलब इंद्रिय तृप्ति में उसका जो है राष्ट्र तक उसका विस्तार होता है पूरे राष्ट्र के लिए। ये गांधी जी पूरे राष्ट्र के लिए इतना उन्होंने त्याग किया कि वो कुर्ता नहीं पहनते थे, गांधी जी कुर्ता नहीं पहनते थे पूरे राष्ट्र के लिए। क्यों कुर्ता नहीं पहनते थे, जब किसी ने पूछा कि गांधी जी मैं आपको कुर्ता देता हूँ आप कुर्ता पहनो, बोले नहीं मैं कुर्ता नहीं पहन सकता, जब तक राष्ट्र के यानी भारत देश के एक एक व्यक्ति को कुर्ता ना मिले तब तक मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। तो इतना जो है भाव है, राष्ट्र की, राष्ट्र लेन है इंद्रिय तृप्ति, सुख सुविधाएं पूरे राष्ट्र को, सुख सुविधाएं मिले, इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मिले। जैसे गांधी जी जब लंदन में गए तो लंदन में गांधी जी से पूछा गया कि आपको कैसा लगा लंदन, तो गांधी जी बोले बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि पूरे हमारे राष्ट्र में, भारत में हर व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं मिले। क्या? इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मिले, और सब जाएं नरक में, है ना। तो भगवान से पृथक होकर के ही, अब कहते तो महात्मा है, प्रभुपाद कहते हैं कैसे महात्मा है, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति भजन ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतात्म, अनन्य भजन से, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, है ना। और कृष्ण की अगर आप सेवा करते हैं और कृष्ण के संदेश को अगर आप फैलाते हैं, है? तो आप जो है सब की रक्षा करते हैं, सब सब लोग प्रसन्न होते हैं, और नहीं तो अपने ही देशवासियों ने उनकी हत्या कर दी, कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अपने देशवासियों के लिए इतना उन्होंने त्याग किया और देशवासी लोग प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए आप जो है अपने शरीर की प्रसन्नता के लिए इतना कार्य करते हैं, वो शरीर भी विद्रोह करता है, वो भी खुश नहीं होता, आपका शरीर भी आपको तंग करेगा। अपने परिवार के लिए आप इतना त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, आपके परिवार वाले भी आपको तंग करेंगे, वो भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो भगवान से पृथक होकर के आप अपने और अपने परिवार को प्रसन्न करना चाहते हैं और कोई प्रसन्न नहीं होता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने अपने शरीर की इंद्रिय तृप्ति तक सीमित रहता है, अपने शरीर की इंद्रिय तृप्ति करना है, परिवार जाए भाड़ में, है ना, तो वो जो है अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के ही लिए, कोई उनको मतलब नहीं है। कि तो कोई सोचता रहे ये तो बड़े महात्मा हैं तो घर परिवार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया है, ये खाने सोने की केवल आवश्यकता पूरी करते हैं और कुछ नहीं, तो है, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति तक ही वो सीमित रहते हैं, कि भाई अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है, है ना। फिर जो ज़्यादा उसका इंद्रिय तृप्ति जो है का विस्तार होता है तो अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति, तो इसको जो है बहुत बड़ा त्याग माना जाता है, भाई अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए आप जो है इतना कार्य कर रहे हैं, है? धन और जीवन और मन वचन और तन सब आप लगा रहे हैं, तो इंद्रिय तृप्ति का विस्तार हो गया परिवार तक। फिर और कोई विस्तार करता है तो समाज तक इंद्रिय तृप्ति का विस्तार करता है, हम पूरे समाज के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, तो वो और ज़्यादा महात्मा माना जाता है कि पूरे समाज की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है कार्य कर रहा है, तो अपने इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके समाज की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, है ना, समाज एक कार्यकर्ता, है ना, माने जाते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति का विस्तार होता है जाति, जाति के लिए करते हैं अपना, है? तो और ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति का विस्तार करते हैं तो और बड़े महात्मा माने जाते हैं जाति। और कोई और ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति का विस्तार करता है तो क्या करता है, पूरे राष्ट्र के लिए इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो गांधी जी का जो है मतलब इस मामले में बहुत आगे हैं, अगर ऐसे महात्मा कहे जाए, लेकिन कोई महात्मा नहीं, कोई महात्मा नहीं, क्योंकि भगवान से अलग होकर के आप जो है राष्ट्र की इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं या जाति की इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, समाज की या परिवार की या अपने शरीर की, है ना, सब क्या है, असत, असत है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचित्रता, ज्ञान व्यर्थ हो गया और कर्म भी सब व्यर्थ हैं और आशाएं भी व्यर्थ हैं, कुछ नहीं होने वाला, असत, असत है, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं असत का अर्थ है बुरा, बुरा यानी गलत, ये सब गलत है, या क्षणिक दोनों। सत का मतलब अच्छा भी होता है, सद्भावे साधु भावे चा सदत्य तत् प्रयोजते, तो सद्भाव यानी स्थाई, सत के दो अर्थ हैं, एक तो सत माने सनातन हमेशा जो स्थाई रहे तो वो सत कहलाता है, और दूसरा सत का मतलब साधु भाव अच्छा है। तो यहाँ सत का मतलब यह है कि अगर भगवान के साथ जुड़ करके आप जो है ये सब पांचों चीज़ों को लगाते हैं, अपना जीवन धन और तन मन वचन, तो सत होता है, है ना। तो सत का मतलब क्या है? अच्छा है, अच्छा है, प्रशंसनीय है। और सत का दूसरा अर्थ क्या है? स्थाई, बना भी रहेगा हमेशा, दोनों बातें हैं। और असत का मतलब दोनों अर्थ उल्टे, असत का मतलब बुरा यानी निंदनीय है वो कार्य, भगवान से पृथक होकर के आप कार्य करते हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, परिवार के लिए या अपने शरीर के लिए, निंदा की बात है। और दूसरा असत का मतलब क्या है? अनित्य, मतलब जैसे पानी में रेखा आपने खींची तो रेखा बन जाती है लेकिन फिर क्या होती है? मिट जाती है, असत। तो आप कार्य तो करते हैं लेकिन परिणाम जो है मिलता है कुछ समय के लिए, फिर से लुप्त हो जाता है, सब लुप्त हो जाता है। तो दोनों अर्थ हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं असत का अर्थ है बुरा या क्षणिक, और सत का अर्थ है अच्छा और स्थायी। सद्भावे साधु भावे चा, सत शब्द का जो प्रयोग होता है एक तो सद्भाव में होता है, साधु भाव में होता है। साधु भाव का मतलब अच्छे भाव में, और सत का मतलब सनातन भाव में भी स्थायी रहे। तो सत शब्द के दो अर्थ हैं, इसीलिए असत शब्द के भी दो अर्थ इसी उल्टे हैं, इसके उल्टे हैं। तो यहां पर ऊपर लिखते हैं सत का अर्थ अच्छा तथा स्थायी। आगे भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं। दोनों अर्थ है ना, सत का स्थायी और उत्तम है ना, अच्छा उत्तम अच्छा जो कुछ भी है प्रशंसनीय है, और स्थायी का मतलब हमेशा बना रहे। तो भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाए, क्या बहुत ऊंचा ज्ञान है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी हैं, है ना, जातिवाद, समाजवाद है, और कहते भी हैं देश की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेकिन असत है, श्रीमद् भागवत के अनुसार असत है। देश की सेवा करो या समाज की सेवा करो या जाति की सेवा करो, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। प्रार्थना भी तो है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, यानी अपना पूरा जीवन, अपना धन और तन मन वचन सब हम अपने देश जाति जिसमें जन्म लिया उसी में ही लगा दें, और सब असत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या लिखते हैं? असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाएं, ये वाद तथा वह वाद कभी स्थायी परिणाम नहीं देता, फलतः निकृष्ट है, है ना, निकृष्ट है, है ना। आगे कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी स्थायी निधि है। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी स्थायी है, सत तो बना रहेगा। इसलिए नेहा विक्रम नाश होती, भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाश होती, आरंभ का भी नाश नहीं है, प्रत्यवायो न वेदते, और उल्टा परिणाम भी नहीं होता कभी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी इस धर्म का पालन किया जाए तो महान भय से रक्षा हो जाती है ना। तो वही चीज है, कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य स्थायी निधि है और सर्वथा शुभ है। दोनों अर्थ, सर्वथा शुभ, उत्तम, शुभ, कल्याणकारी, ये सब जो है ये, क्योंकि ये सर्व कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण के निमित्त किया जाता है। तो श्री कृष्ण को केंद्र बना करके कार्य करते हैं, और श्री कृष्ण सर्व कल्याणकारी है ना। अब जैसे ब्रजवासी हैं तो ब्रजवासी नहीं जानते कृष्ण को, कि कृष्ण कौन है, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो जो है सर्वोत्तम है, प्रशंसा की बात है। वो ना भी जाने, ना भी जाने तो भी कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण की सेवा करें, तो वो जो है, वो जो है क्या होता है, संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होता है, और वो हमेशा स्थायी रहता है, बना रहता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जानते हैं नहीं जानते, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, चाहे अपना मित्र समझ करके या अपना पुत्र समझ करके। तो माता सीता कृष्ण को अपने पुत्र से ज्यादा कुछ नहीं समझते, और कृष्ण संतुष्ट हैं, बल्कि कृष्ण ज्यादा ही संतुष्ट है, क्योंकि उनकी और तीव्र जो है वो जो स्नेह है और तीव्र होता है कृष्ण को अपना पुत्र मान करके। तो सर्वोच्च स्थिति है माता यशोदा की, ये गोपियों की स्थिति सर्वोच्च है, वो अपने को अपना कांत मानती हैं, हैं अपना पति मानती हैं। तो पांचों चीजें, जीवन भी है, धन भी है, और मन है, तन है, और वचन, पांचों चीजें गोपियों की, माता यशोदा की, ब्रजवासियों की, पांचों चीजें किसमें लगी हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगी हैं। तो सर्वोच्च कार्य जानने की आवश्यकता नहीं, बल्कि कृष्ण को जानने में तो बाधा आती है, इसलिए कृष्ण अपने अपना ऐश्वर्य को ढके रहते हैं। ब्रज में कृष्ण अपने ऐश्वर्य को ढके रहते हैं, क्योंकि कृष्ण का अगर ऐश्वर्य पता चलेगा तो ब्रजवासियों का वो स्नेह, वो प्रेम और जो भाव है वो जो है नहीं रहेगा उतना। तो तीव्रता जो है उनके स्नेह की है, जो वात्सल्य की या माधुर्य की है या सख्य की है ना, ये सब जो तीव्रता है वो कैसे होती है? जब कृष्ण का ऐश्वर्य ढका है तो वो ज्यादा ऊपर है, सबसे ऊपर है, क्योंकि वो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रसन्न कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि सर्व कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण के निमित्त किया जाता है, जो हर एक के सुहृद मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण सबके सुहृद हैं, लेकिन कृष्ण सबके सुहृद हैं। जैसे जल को आप जानते नहीं जानते, जल में आप सिंचन करेंगे तो पूरे में जाएगा ही, आपके जानने से और ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जल में आप जल दें तो पूरे वृक्ष में जाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संपूर्ण सृष्टि में जो है क्या होता है, पवित्र करता है, संपूर्ण सृष्टि को पवित्र करता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं श्री भगवान ही हर एक वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। एकमात्र भोक्ता और एकमात्र स्वामी है, एकमात्र भोक्ता, जैसे जड़ पेड़ की जड़ ही एकमात्र भोक्ता है, और भोक्ता उसका तना और या शाखाएं या पत्ती कोई नहीं, आप पानी डालोगे तो जाएगा नहीं पानी, पत्ती पेड़ की पत्ती में पानी डालोगे तो पानी नहीं जाएगा उसमें, उसको जो है पानी नहीं मिलेगा। पानी कहाँ से मिलेगा? जड़ से ही मिलेगा, एकमात्र भोक्ता जड़ है ना। उसी प्रकार से श्री कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, आप जो है श्री कृष्ण की सेवा करते हैं वही जो है संपूर्ण सृष्टि में जाएगी और आपको भी मिलेगी। सबको मिलेगी और आपको भी मिलेगी। और आप अगर ईर्ष्या करते हैं, नहीं नहीं और किसी को नहीं मुझे ही मिलनी चाहिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेड़ की एक पत्ती चाहती कि और किसी पत्ते को पानी ना मिले मुझे पानी मिले, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जड़ में पानी डालना पड़ेगा तो अपने को ही पानी मिलेगा और सबको पानी मिलेगा, सबकी है। लेकिन जो लोग अलग हो गए हैं, कट गए हैं, तो उनको नहीं मिलेगा है। कोई शाखा जो है अगर पेड़ से कट गई और जड़ से उसका संबंध नहीं रहा, तो कृष्ण की आप सेवा करते हैं तो वो जो है वो तो सूख ही जाएगी, तो जड़ से अलग हो गई, वृक्ष से अलग हो गई ना। तो जो असुर लोग होते हैं है ना, तो वो जो है कृष्ण की प्रसन्नता से उनको प्रसन्नता नहीं होती, वे अपने को अलग मानते हैं ना। तो वो जो है फिर वो जितने भी कार्य करें सब असत होते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः श्री भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है, ऐसे कर्मों के फल स्वरूप कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है। तो कर्ता पहचान या तुरंत पहचान लिया जाता है, यानी भगवान भी उसको यश देते हैं कि इन्होंने ये कार्य किया, अब प्रभुपाद ने जो है जो कार्य किया है ना, तो अब प्रभुपाद का कितना यश फैल रहा है। तो प्रभुपाद ने थोड़ी अपना यश फैलाने के लिए कोई कार्य किया कि प्रभुपाद का कैसे फैल रहा है, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे कर्म के फलस्वरूप कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है ना। आगे नचा तस्मान मनुष्य सु कश्चिन में प्रिय कृतमहा, ऐसा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है, भले ही ऊपर से वो भौतिकवादी कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे। तो ऊपर से हो सकता है कि वो भौतिकवादी कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है ना, वो क्या थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे है? तो कोई लगे भाई तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो कितना कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कितना कार्य किया है ना कृष्ण के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि वो दिखाई दे, प्रभुपाद तो दिखाई देते हैं सब कार्य किया उन्होंने, और सन्यासी के रूप में ये वो तो गृहस्थ हैं भक्त विनोद ठाकुर है ना, तो उनका कार्य कोई नहीं देख पाए, तो भगवान देखते हैं और भगवान देखते फिर भगवान उसको ऊपर उठाते हैं। तो भक्त विनोद ठाकुर का भी अब नाम कितना ऊपर उठा हुआ है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भौतिकवादी कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म का अंतर यही है, भौतिकवादी कर्म और आध्यात्मिक कर्म। तो भौतिकवादी कर्म क्या है, बस अपना शरीर अपना परिवार या अपनी जाति या अपना राष्ट्र या अपना जो समाज, तो ये भौतिकवादी कर्म है ना। तो भौतिकवादी कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म का अंतर यही है कि भौतिक कर्म अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ मिलता है, जबकि भौतिकवादी कर्म से किसी को लाभ नहीं होता। क्या किसी को लाभ नहीं होता, अंत में सब जो है मिट जाता है, जैसे पानी में खींची गई रेखा मिट जाएगी, पानी में खींची गई रेखा मिट जाती है। उसी प्रकार से भौतिकवादी कर्म से किसी को लाभ नहीं होता, बल्कि वो कर्म के नियमों से बंधता जाता है ना। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के अष्टम स्कंध के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज जो है ये 9वां अध्याय पूरा हुआ, तो इसकी पुष्पिका जो इसमें नहीं दी गई है, लेकिन हर अध्याय के अंत में पुष्पिका संस्कृत में आती है, और संस्कृत में इस अध्याय की जो पुष्पिका इस प्रकार है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंधे अमृत मथने नाम 9वां अध्याय। तो ये इसमें है नहीं, होना चाहिए। तो संस्कृत में भी पुष्पिका हर अध्याय के अंत में ऐसी होती है, अध्याय का नाम भी है। तो अब यहाँ तात्पर्य पूरा हो गया है, तो अब मैं इस श्लोक का जो हिंदी पद्य अनुवाद है वो पढ़ के सुनाता हूँ, विष्णुप्रिय देवी ने लिखा है। निज प्राण मन कर्म धन और वाणी के आश्रय, निज प्राण मन कर्म धन और वाणी के आश्रय, निज तन और सुत आदि अर्थ जो कर्म भी जीव करे, निज तन और सुत आदि के लिए जो कर्म भी जीव करे वे सब व्यर्थ ही होते हैं, भेद बुद्धि वहां बनी रहे, वे सब व्यर्थ ही होते हैं, भेद बुद्धि वहां बनी रहे, किंतु इन सभी साधनों से श्री हरि के हेतु जो भी करे, किंतु इन सभी साधनों से श्री हरि के हेतु जो भी करे, भेदभाव से रहित हो सब जग में वो सफल हो, भेदभाव से रहित हो सब जग में वो सफल हो, अपने तन पुत्र और संसार में भी फलीभूत हो, अपने तन पुत्र और संसार में भी फलीभूत हो। जो वृक्ष के मूल में जल जो दिया तो तन तना शाखा और सब पत्ते, जो वृक्ष के मूल में जल जो दिया तो तना शाखा और सब पत्ते मूल में पड़े हुए जल से स्वतः ही पुष्टित हो जाएं, मूल में पड़े हुए जल से स्वतः ही पुष्टित हो जाएं, त्यों ही श्री हरि के हेतु जो भी कर्म किए जाएं, त्यों ही श्री हरि के हेतु जो भी कर्म किए जाएं, सबके सभी इष्टों की वे स्वतः पूर्ति कर जाएं, सबके सभी इष्टों की वे स्वतः पूर्ति कर जाएं ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की, लेकिन ये जो शिक्षा है ये इस कथा के संबंध में सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, इस कथा के संबंध में सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि जो देवता लोग हैं तो उनको जो है क्या मिला, सुख मिला, अमृत मिला, और भगवान की प्रसन्नता मिली है? क्यों? भगवान के आश्रित, वे भगवान के आश्रित रहे, अपना हित चाहते हैं, देवता लोग भी अपना हित चाहते हैं, असुर लोग भी अपना हित चाहते हैं, लेकिन देवता लोग जो है भगवान के माध्यम से अपना हित चाहते हैं और भगवान को अपने साथ में रखा, भगवान उनके साथ में। देवता लोग जो है ना असुरों से पराजित हो गए तो भगवान के शरण में आते हैं और भगवान उनको जो है पहले नीति सिखाते हैं, असुरों से तुम लोग जो है संधि करो, लेकिन संधि कैसे करो? बाहर से करो, अंदर से दूरी बना के रखो। देवताओं को क्या भगवान कहते हैं? ऐसे नहीं हम सब हम तो सब के प्रति समान होते हैं, हमारी तो समता है, अज्ञान है। असुरों को और देवताओं को हम तो बराबर मानते हैं, हैं? तो बहुत बड़े महात्मा हैं आप, लेकिन क्या है? अज्ञान है। देवताओं को क्या कहा? असुरों से संधि करो, लेकिन ऊपर से संधि करो, अंदर से दूरी बना के रखो, अंदर से शत्रुता ही बना के रखो, वो शत्रु उनको शत्रु ही मानो। तो भगवान जो उपदेश देते हैं वही पालन करना है आपको। नहीं 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 हम तो ज्यादा ज्ञानी हैं, हम कोई भेद नहीं मानते, हम सबको बराबर मानते हैं। वो ज्ञानी क्या होगा? मोघासा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान, उसका ज्ञान व्यर्थ है, आशा व्यर्थ, कर्म व्यर्थ। भगवान ने कहा असुरों के साथ केवल कुछ समय के लिए संधि करना है, लेकिन शत्रुता हमेशा बना के रखना है ना। संधि करो उनसे, लेकिन कैसे संधि करो? जैसे सांप ने चूहे के साथ संधि की थी, सांप ने चूहे के साथ संधि की थी, क्या एक टोकरी में सांप भी बंद हो गया और चूहा भी बंद हो गया, अब निकल नहीं सकते दोनों। तो चूहा जो है छेद करके निकल सकता है, लेकिन चूहा डरा हुआ है सांप मुझे खा जाएगा। तो सांप ने कहा कि भाई अभी तो मैं भी संकट में हूँ, तो तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें नहीं खाता और तुम जो है छेद कर दो तो तुम भी निकल जाओ, मैं भी निकल जाऊँ। तो चूहे ने छेद किया, फिर सांप ने चूहे को भी खा लिया और निकल भी गया, ठीक है। तो भगवान ने शिक्षा दी ऐसी और देवताओं ने शिक्षा का पालन किया। फिर भगवान समुद्र मंथन के समय भी क्या करते हैं? देवताओं के पक्ष में, देवताओं के पक्ष में है। तो भगवान ने सांप का मुंह पकड़ा, सब देवता लोग सांप के मुंह की तरफ हो गए और पूंछ की तरफ असुर। तो असुरों ने ऐसे किया क्या? असहयोग आंदोलन, हम नहीं काम करेंगे, सांप का जो पूंछ है वो तो अशुभ होती है, हम नहीं ऐसे काम कर सकते, हम समुद्र मंथन में काम नहीं करेंगे, असहयोग। तो भगवान हंस करके पूछ की तरफ आ गए और वो लोग मुंह की तरफ आ गए और सांप के मुंह में जो है जो जहर था फिर असुरों को जो है लगी गर्मी और जो है सब काले पड़ गए। तो ये तो भगवान जो है जैसा इशारा करें सब देवता लोग उसी हिसाब से चलते हैं। जब समुद्र से अमृत निकला तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लिए निकले। भगवान की जो योजना थी उसी अनुसार कार्य करना है, क्या कि देवताओं को अमृत मिलना चाहिए, उनको अमृत नहीं मिलना चाहिए, पूरा यही मतलब पक्का उन्होंने विचार किया हुआ है, योजना ऐसी कि इनको अमृत मिलना ही नहीं चाहिए, है ना। तो क्या किया? तो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं सब देवता लोग भगवान के सारे पर। तो अब समुद्र से जो है धन्वंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लिए हुए और अब धन्वंतरी भगवान खुद नहीं कुछ कर रहे हैं कि भाई चलो बैठो एक लाइन में और अमृत जो है अब बांटा जाएगा, तो कोई गाइडेंस कर ही नहीं रहा और भगवान भी जो असुरों देवताओं के पक्ष में है वो भी गाइड नहीं कर रहे किसी को, सब चुपचाप देख रहे हैं। तो असुरों ने जब देखा कि कोई गाइडेंस दे ही नहीं रहा तो छीन लिया, और भगवान उनको मौका देना चाहते थे कि ये अन्याय पहले करें फिर हम करेंगे अन्याय, पहले अन्याय वो करें फिर हम अन्याय करेंगे, फिर हमारा दोष नहीं माना जाएगा। तो अन्याय पूर्वक उन्होंने जो है छीन लिया और भागे। अब वो भागे तो उसमें भी आपस में भी अन्याय शुरू हो गया, जिसके हाथ में कलश है वो भाग रहा है तो दूसरा जो है जो उससे बलवान है तो उसे छीन के इधर इस दिशा में भागता है, फिर तीसरा उससे बलवान है उससे छीन के इस दिशा में भागता है। जैसे वॉलीबॉल होती ना वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल हमेशा ऊपर रहती है, एक हाथ से दूसरे, दूसरे तीसरे, ऐसे वो अमृत का कलश वॉलीबॉल की तरह हो गया। वो चल नहीं रहा था, गिर नहीं रहा था, लेकिन बड़े सुरक्षा पूर्वक पकड़ करके जो है वो भाग रहा है इधर, वो दूसरा उससे लेकर के उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, और अमृत का कलश जो है चारों तरफ घूम रहा है। फिर असुर लोग जो है आपस में भी जो है बोलने लगे, अरे देवताओं को भी तो मिलना चाहिए, जब अपने को नहीं मिल रहा तो फिर वो धर्म की बात करें, देवताओं को भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से आपस में वो बांट नहीं पाए और भगवान मोहिनी रूप में आ गए। तो भगवान की योजना इसी तरीके की, मोहिनी रूप में आ गए और जैसा सौंदर्य दिखाया तो सब अमृत को भूल गए। अब सब एक टक देख रहे हैं माता जी को, एक टक देख रहे हैं, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर, किसकी पुत्री हो, किसको अपना पति बनाना चाहती हो, क्या कहाँ से आई हो, है ना, अमृत भूल गए। और भगवान बोले कि देखो तुम लोग तो कश्यप के संतान हो, बहुत बुद्धिमान हो, और हम जैसी स्त्रियां हैं, पुष्चली हैं, मतलब कोई स्थान, एक स्थान तो होता नहीं, इधर से इधर घूमती रहती हैं, आपको तो विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बोले हाँ आपका हम जरूर विश्वास करेंगे, आप हमको इतनी शिक्षा दे रही हो, हम आपका जरूर विश्वास करेंगे, ये अमृत का कलश है हमारे पास, आप जो है बांट दो, बांट दो। तो उनका इरादा यही था कि हम दर्शन करते रहें इनका और इनको जो है ये प्रसन्न रहें हमारे ऊपर, तो हमारा यही अमृत सबसे बड़ा अमृत है, बाकी अमृत की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो पहले से बता रही हूँ कि मैं जो है जिसको अपनी इच्छा से अमृत दूंगी, जिसको नहीं दूंगी है तो फिर कोई शिकायत नहीं करना। हाँ कोई शिकायत नहीं करें, कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेगी। और भगवान जो है इनको जो है अपने मुस्कुरा रहे हैं देख करके, हंस रहे हैं असुरों की तरफ, और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, और देवता असुर लोग बड़े संतुष्ट हो रहे हैं, तो हमको देख करके तो हंस रही है, तो हमारा सबसे बड़ा अमृत है और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। तो देवता लोग जो है भगवान के जो है पूरी तरह से समर्पित हैं, है ना, माता भगवान माता भी हैं, पिता भी हैं, सब है ना। तो देवताओं को अमृत मिला, असुरों को अमृत नहीं मिला, और इसके बाद फिर भगवान जो है अपने रूप में आ गए, अपने रूप में आ गए विष्णु रूप में। अब असुरों ने देखा कि ये जो है अब हम सब प्रकार से गए, अब वो स्त्री भी नहीं रही जिसको हम देखते हैं, और जो हस्ती हमारे सामने वो भी नहीं रही, अमृत भी नहीं मिला। तो फिर युद्ध हुआ, तब युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को अपने साथ में रख करके जो है आप कार्य करें, है ना। जैसे कई गृहस्थ लोग होते हैं तो अपने घर में मंदिर बना लेते हैं, तो अपने घर में मंदिर बना लिया तो भगवान को भी अपने घर का एक जो है सदस्य मान लिया, एक मेंबर घर का ये भी है, है ना। तो उनको जो आप अपने लिए करते हो तो मेरे लिए भी करो, भगवान के अपने लिए करते हो मेरे लिए करो, तो आप कपड़े बनवाते हो तो उनके लिए भी कपड़े बनवाओ, आप पंखा की हवा लेते हो तो उनको भी पंखा की हवा दीजिए, आप भोजन करते हो तो उनको भी भोजन दीजिए। तो इस तरह से क्या हुआ, आप कर तो रहे अपने घर परिवार के लिए, लेकिन साथ साथ भगवान को भी अपने साथ जोड़ दिया। तो भगवान को कोई शिकायत नहीं है, आप छोटा बच्चा मान लो उनको कि छोटा बच्चा है, कोई भी हो, अपना भाई, अपना पिता, अपना स्वामी, घर का मालिक है या घर के पिता हैं या घर का बच्चा है, भगवान को किसी प्रकार से मान लो, लेकिन भगवान को अपने साथ में रखो। तो इस तरह से भी जो है आपकी संतुष्टि होगी और सबकी संतुष्टि होगी, सब लोग संतुष्ट होंगे, और नहीं तो अपने घर की और अपने परिवार की है जो है प्रसन्नता के लिए जितने भी लोग कार्य करते हैं तो अंत में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मतलब अशांति, अशांति ही मिलेगी, कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कोई भी संतुष्ट नहीं होता। आप किसको भी आप संतुष्ट करना चाहे, अपने पुत्र को, वो लड़का भी जो है उल्टी चाल चलता है। आज लड़के को अगर भक्ति नहीं सिखाई आपने, है ना, और लड़के को जो है खूब खिलाया पिलाया, वो बिगड़ता ही जाएगा और वो कुछ भी नहीं मानेगा आपका उपकार, है ना। तो इसलिए समाज सेवा, परिवार सेवा, देश सेवा, जाति सेवा, ये सब क्या है, असत, व्यर्थ है, है ना। लेकिन यही है कि लोग जो है इसको बड़ा
जो है आदर देते हैं कि भाई ये महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा है, समाज सेवा करते हैं, अपना जो है अपने इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके समाज की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कितना बड़ा त्याग है, सब व्यर्थ है। इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, है? गांधी जी कहते हैं कि मैं कुर्ता नहीं पहन सकता जब तक कि मेरे राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को कुर्ता ना मिले तब तक मैं कुर्ता नहीं पहन सकता। लेकिन कुछ भी गुण नहीं माना जाता है, सब क्या होता है, नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन, कोई प्रश्न, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी प्रभु, इनको माइक दीजिए।
हरे कृष्ण जीतन मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते हैं रेगुलर और हमारा हमारी भक्ति बढ़ाते हैं।
ये कृष्ण कुमार प्रभु मुझे बुलाते, नहीं तो कोई बुलाता नहीं था मुझे।
जीतन मित्र, अच्छा
कृष्ण कुमार प्रभु ही बुलाते हैं, नहीं तो कोई बुलाने वाला नहीं मुझको।
कृष्ण कुमार प्रभु का भी धन्यवाद जी। प्रभु, जैसे आपने आपके लेक्चर के अंतिम में भी बताया कि भगवान को अपना सखा या मतलब घर में रख के बच्चा मान लेना चाहिए, और उससे पहले भी आपने बताया कि कृष्ण से हमें प्रेम करना चाहिए, जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो इससे व्यक्ति सहजिया ना बने, उससे कैसे बचे।
हाँ देखिए, जो मैंने कहा जानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है हमको, हमको जानने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं करेंगे, प्रेम तो है नहीं कृष्ण के प्रति, प्रेम तो है नहीं, तो हमें जानना पड़ेगा। और अपना जो है कृष्ण के प्रति जो भी ईर्ष्या है, जीव के अंदर विद्रोह की भावना है, उसको कम करना है। और हम कृष्ण का नाम लें, कृष्ण के प्रति कृष्ण के नाम में भी रुचि नहीं होती तो भी आपको जो है करना है। तो अगर आपको ज्ञान होता है तो आपकी रुचि नहीं तो भी आप जो है करेंगे, तो भी हम जो है कृष्ण से विमुख हैं। तो ऐसी हालत में हमें ज्ञान लेना है तो कम से कम बुद्धि से हम ज्ञान लें। और मन बड़ा दूषित है, मन बहुत उल्टा है ना, नाम में बिल्कुल रुचि नहीं, तो आप जो है जब आपको ज्ञान होगा तब आप जो है अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को आप बलपूर्वक लगाएंगे कि करो, है ना। तो हम अभी इस अवस्था में तो ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसलिए कृष्ण भावना का ज्ञान भगवान भी देते हैं भगवद गीता में, तो हमें जो है ये करना है जरूरी है। लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो इतने ऊंचे धरातल में है कि अगर उनको ज्ञान होगा तो वो जो है कृष्ण को परमेश्वर मानेंगे, तो उनका जो है इतना निकटता नहीं रहेगी। तो जब उनका ज्ञान ढक जाता है तो कृष्ण को वो और निकट आते हैं, कृष्ण के निकट आते हैं या कृष्ण उनके निकट आते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है कि भाई उनके लिए जो है कृष्ण का जो ऐश्वर्य, उसको अज्ञान नहीं कहेंगे, उसको अज्ञान नहीं कहेंगे। माता यशोदा का अज्ञान नहीं है, ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान ढका हुआ सुरक्षित है, और भगवान जो है समय समय पर वो प्रकट करते रहते हैं। जैसे माता यशोदा की गोद में कृष्ण लेटे हैं, स्तन पी रहे हैं, और स्तन पीते पीते मुंह खोला, और मुंह खोला तो पूरा विश्व दिखाई दिया। माता यशोदा सोचते हैं क्या है, तो कृष्ण संकेत दे रहे हैं कि तुम मुझे जो स्तन पिला रहे हो ना, दूध पिला रहे हो, तो पूरे सृष्टि में जा रहा है, थोड़ा सा दूध है वो पूरी सृष्टि में जा रहा है। तो भगवान जो है समय समय पर जो है वो दिखाते हैं, है ना, फिर ज्ञान ढक देते हैं। तो ये चीज़ है कि जो है अज्ञान की स्थिति नहीं होती है, जो भक्त होते हैं जो जिनका ज्ञान ढका हुआ है, तो कृष्ण के निकट रहने के कारण और कृष्ण की निकटता के लिए कृष्ण ही जो है उस ज्ञान को ढक देते हैं, है ना। तो वो अज्ञान नहीं कहेंगे कि हम कहेंगे नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, हम उनकी नकल करेंगे, है ना। तो आपके अंदर तो वो है नहीं और आप अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। तो जो सहजिया लोग होते हैं तो ये निंदनीय है, इनके कार्य निंदनीय है, है ना, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना, और वो जो गोप्य भाव की नकल कर रहे हैं, है ना, तो उनका व्यभिचार बिल्कुल खुला है, नशा भी बिल्कुल खुले होके करते हैं। तो वो अपने शरीर की जो है इंद्रिय तृप्ति में सीमित हैं, है ना, और गोपी भाव की नकल करते हैं कि नकल करने से गोपी भाव आ जाएगा। तो ये जो है बहुत अज्ञान है, ठीक है ना प्रभु।
लेकिन प्रभु हमारा हमारा गोल भी तो वो है, हम सहजिया भी नहीं बन सक, मतलब हम बनना बनना, हमें सहजिया भी नहीं बनना, और हमारा एक गोल भी है कि हाँ वो जो ब्रजवासी भाव है वो आना है। तो जो इस्कॉन के डिवोटीज है वो कब समझेंगे कि अब मुझे ये भाव,
इनका प्रश्न है कि हमारा लक्ष्य है ब्रजवासी भाव, हमारा लक्ष्य है गोपी भरतु पद कमलियोर दास दासानुदासा। हम ब्रजवासी नहीं बन सकते, हम ब्रजवासी नहीं बन सकते है? हम जो है उनके चरण कमलों के दास के दास के दास के दास हम है ना, और इसी में ही हम बने रहें। अगर आप भक्ति में आप जो है किसी धरातल में साधु संग, अभी भक्ति श्रद्धा फिर साधु संग है, तो साधु संग के धरातल पे आ गए तो इसी में ही आप अपना जो है बहुत बड़ा लाभ समझिए कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है लाभ। मैं जन्म जन्म भक्तों की संगति में रहूं, आप इस्कॉन में आ गए, जन्म जन्म में प्रभु से ही, तो प्रभुपाद को ना छोड़ो जन्म जन्म, आप इस्कॉन में ही रहो जन्म जन्म, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर प्रभुपाद को छोड़ करके गौड़ी मठ में जाएंगे, हमें गोपी भाव, हम गोपी भाव चाहिए। वो कहते हैं गौड़ी मठ वाले कहते हैं प्रभुपाद ने तो आपको जो है प्रारंभिक शिक्षाएं दी हैं और हम आपको आगे की शिक्षाएं देंगे देंगे, आप प्राइमरी पढ़ के आप अब आप आओ उसमें इंटर में आओ, तो हम इंटर कॉलेज है, प्राइमरी आपने जो है पढ़ लिया, अब हाई स्कूल में आ जाओ और आप चले जाओगे। बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम क्या कहते हैं, चखो दाना जिलो देई जिलो जेई, जन्म जन्म है प्रभु से ही, तो जन्म जन्म हम इस्कॉन में रहें। अगर हम ना जा पाए भगवान के धाम में तो जन्म जन्म हम प्रभुपाद के ही रहें, तो वो हमारी जो है इच्छा होनी चाहिए। जहाँ भी हैं जैसे भी हैं तो हम गिरे नहीं, आपको ये चिंता होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ें, इसकी चिंता होनी चाहिए, या आपकी चिंता होनी चाहिए आप गिरे नहीं कि पीछे ना जाएं। पीछे की तरफ देखो, पीछे आपका जीवन कैसा था, पीछे आपकी संगति कैसी थी, अब आप यहाँ भक्तों की संगति में आ गए, अब आपको जो है कितना दिशा मिल रही है, आपको जो है कितना आपको ज्ञान मिल रहा है, तो ये कितनी बड़ी जो है ये कितना बड़ा लाभ है, इसको समझिए कि ये न छूटे। तो ये हमारी चिंता होनी चाहिए कि हम भक्तों की संगति में जन्म जन्म रहें, और वो भी प्रभुपाद के आंदोलन में। अब इस बाहर जो है बाहर भी जो है दूसरे संप्रदाय हैं, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, आप इसी में रहिए, जो कुछ मिलेगा वो आप नहीं चाहते हैं तो भी आपको मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो आप नहीं चाहते हैं आगे बढ़ना है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपराध ना हो, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और गिरेंगे समुद्र में, जैसे नौका है, एक नौका है एक बहुत बड़ी इस्कॉन नौका है, इस्कॉन की नौका में आप आ गए है ना, अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, नौका के बाहर जाएंगे। तो नौका में रहो, जो आपसे आगे हैं उनसे हमेशा पीछे रहो, तो नौका पूरी की पूरी नौका ही जा रही है तट की ओर, तो पूरी नौका तट की ओर जा रही है, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप नौका में ही बैठे रहो है? तो ये इस्कॉन जो है एक नौका है, इसमें आप आ गए हैं तो अपने से जो ऊपर हैं हमेशा उनको अपने से ऊपर ही रखो, आप वहीं रहो है? और इस तरह से सब लोग एक साथ जा रहे हैं पूरा मिला, तो वो जहाज आगे की तरफ बढ़ रहा है और तट की ओर जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है वो तट की ओर जा रहा है। और आप अगर जाएंगे तट की ओर तो कहाँ जाएंगे, ब्लूप ब्लूप। प्रभुपाद ने एक शब्द दिया है अंग्रेजी में, अंग्रेजी का शब्द नहीं है, प्रभुपाद ने शब्द दिया ब्लू, क्योंकि कोई भारी चीज है पानी में गिरती है तो आवाज होती है ब्लू, तो क्या होंगे आप, ब्लूप हो जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करो है, आप सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बस सुरक्षित रहो अपनी स्थिति में, सेवा में आप लगे रहो, और जन्म जन्म में प्रभु से ही जन्म जन्म उसी में लगे रहो, फिर आपको जो है कोई सेवा दूसरी दी जाती है, कुछ और आपको अधिकार दिए जाते हैं, तो उनके अनुसार है जो अपना इस्कॉन के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको जो है कुछ और आगे अगर दिया जाता है कार्य, तो आगे का कार्य करो, कोई भी कार्य करो है? लेकिन भक्तों की संगति में रहो हमेशा। साधु संघ साधु संघ सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो, तो आप साधु संगति में रहो तो सबसे अच्छी स्थिति यही है, सबसे अच्छी भावना यही है ना। तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम जो है ब्रजवासियों का भाव प्राप्त करें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। Thank you.